আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মায়ে ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা। সাদাকাল্লাহুল আযীম। বারগাহে রিসালাত মে দুরুদ পাক কা নজরানা পেশি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। আজ আমারি নশিস্ত কা উনওয়ান হে হজ বাইতুল্লাহ। আপকো মালুম হে কে আজমি নে হজ কি রওয়ানগি শুরু হো চুকি হে, আর জেসে জেসে হজ কা ওয়াক্ত করিব আ রাহা হে, তরবিয়তি নশিস্তে হজ কে সিলসিলে মে মুখতালিফ মকামাত পর মুনাক্কিদ হো রহি হে। উসি মুনাসিবত সে হামনে সোচা কে আজ হজ কে মুতালিক তরবিয়তি নশিস্ত কি জায়ে, জো লোক যা রহে হে উনকে লিয়ে আসানি হো। পহলে ইস আয়াত মুবারকা কা তরজমা আর উসকে বাদ হজ কে মুতালিক জরুরি মাসাইল আর গুজারিশাত। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ইরশাদে রব্বানী হুয়া ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতে মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা। আল্লাহ কে লিয়ে বাইতুল্লাহ কা হজ করনা ফরজ হে উস পর জো ইসকে করনে কি তাকত ও ইস্তেতাত রাখতা হো, যাদে রাহ রাখতা হো, ইয়ানি উসকে পাস ইতনা পয়সা হো কি ও আনে জানে কা খরচ বরদাশ কর সকে, ওয়াহাঁ রহনে সহনে কা খরচ বরদাশ কর সকে, আর আপনে আহল ও আয়াল কে লিয়ে ইতনা ছোড় কর যা সকে কি ও কিসি কে আগে হাত না ফেলায়ে আর ও খানে পিনে কা ইন্তজাম রখ সকে। ইয়ানি সাহিবে নিসাব পর হজ ফরজ, আর উমর মে এক মরতবা হজ করনা হর আকিল বালিগ মুসলমান মর্দ আর ঔরত সাহিবে নিসাব পর ফরজ। ইন দীন ইউসরুন, দীন মে আসানি হে, ইয়ানি ফরমায়া কে হর সাল হজ করো, এক হজ উমর মে এক মরতবা, উসসে জায়েদ আগর আপ মে ইস্তেতাত হে তো আপ জায়েদ করেন, ও নফলি হো জায়েগা, লেকিন ফরজ এক মরতবা। হজ কে লুগভি মানা হে কিসি আজিম ও শান চিজ কি তরফ কসদ করনা ইরাদা করনা। ইস্তিলাহ শরীয়ত মে হজ উন আফআল কা নাম হে জো ইহরাম পহননে কে বাদ, ইয়ানি আদমি ইহরাম পহনতে না হজ কি নিয়ত করতা, ইহরাম পহননে কে বাদ হজ কি নিয়ত করনে কে বাদ জো আফআল আদা কিয়ে জাতে হে উসকা নাম হজ হে, যে ইস্তিলাহ শরীয়ত। ফির হজ কি তিন কিসমে হে, ইফরাত, কিরান আর তমত্তু। ইফরাত কে মানা হে আকেলা, হজ কি নিয়ত আদমি নে কর লি, ইহরাম পহন লিয়া, ও ইহরাম সিফ হজ কে লিয়ে হে, ইয়ানি ইসমে ও উমরে কো জমা নাই কর রাহা, সিফ হজ কি নিয়ত সে ইহরাম বাঁধেগা, হজ করেগা, ইসে হজ ইফরাত কহতে, আর জো ইয়ে হজ ইফরাত করতা হে উসে মুফরত কহতে। দূসরি কিসম হে কিরান, কিরান কে মানা হে দো চিজো কা জমা করনা, হজ কিরান মে হজ আর উমরে দোনো কো জমা কিয়া জাতা, ইয়ানি জব আপ ইহরাম পহনকর নিয়ত করেঙ্গে তো হজ আর উমরে কি সাথ নিয়ত করেঙ্গে, আর উসমে এক মসলা ইয়ে হে কে উমরা করনে কে বাদ ইহরাম নহীং উতরেগা, জব হজ কর লেঙ্গে উসকে বাদ ইহরাম উতারা জায়েগা, ইয়ানি হলক করবানে কে বাদ কুরবানি করনে কে বাদ ফির ইহরাম উতরেগা তওয়াফ কে বাদ। তো আব ইসমে কে হে কিরান কা মতলব দো চিজো কো মিলানা। আচ্ছা ইসমে মুশকিল ইয়ে হে কে আগর আপ পহলে সে গয়ে আর আপনে হজ কিরান কি নিয়ত কর লি, तो उमरा करने के बाद अहराम नहीं खोल सकते और अहराम की जितनी पाबंदियां हैं वो आप पर लाजिम होंगी। मसलन सर नहीं ढांप सकते, कंघा नहीं कर सकते बालों में या दाढ़ी में, जाहिर है कोई बाल टूट जाएगा तो फिर उसमें मसला है, दम होगा। इसी तरह दीगर चीजें, खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, अहराम पहनने के बाद अहराम पर खुशबू नहीं लगा सकते, किसी जानवर को नहीं मार सकते, शिकार नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हज किरान की नियत आपने पहले से कर ली तो आप वहां पर गए, उमरा आपने अदा कर लिया, लेकिन अहराम नहीं खुलेगा। जब तक हज नहीं कर लेंगे अहराम में रहेंगे, और जब तक अहराम में रहेंगे सारी पाबंदियां रहेंगी। इस हज की फजीलत तो बहुत है लेकिन पाबंदियां भी ज्यादा हैं। इसीलिए बहुत से लोग ये करते हैं कि बिल्कुल हज के करीब, यानी जब हज के दिन करीब आ रहे हैं, तब जाकर हज किरान की नियत करके और फिर अहराम बांध ले, तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। उमरा करने के बाद एक दिन के बाद हज का जमाना शुरू हो जाता है, हज के दिन आ जाते हैं, तो फिर वो हज में मसरूफ हो जाते हैं और हज के बाद अहराम खोल देते हैं। लेकिन अगर शुरू से किया जाए तो उसमें सारी पाबंदियां लाजिम होंगी जब तक अहराम नहीं खुलेगा। और इस हज के करने वाले को कारिन कहते हैं, हज किरान जो करेगा। तीसरी किस्म है हज तमत्तो, ये सबसे आसान है। तमत्तो के माना फायदा उठाना। इसमें तरीका यह है कि इस्तेलाह शरीयत में मीकात से उमरे का अहराम बांधकर बैतुल्लाह के चक्कर लग, यानी तवाफ करके उमरा अदा करके अहराम खोल दिया जाएगा, फिर आठ जिलहिज को फिर हज का अहराम बांधा जाएगा। तो इसमें आसानी है। मसलन आप यहां से पाकिस्तान से गए, आपने अहराम बांध लिया गुसल करके और तमाम चीजों के साथ, और नियत आपने कर ली, और वहां पहुंचकर आपने तवाफ किया सही की उमरा करने के बाद अहराम खोल दिया। अब आप आजाद हैं, आप नहा भी सकते हैं, जो जो काम है आप सब कर सकते हैं, अपने लिबास में है। फिर आठ दिन हज को दोबारा आप हज का अहराम बांधें। तो ये आसान है तीसरी किस्म हज तमत्तो, और इसके करने वाले को मुतमत्ते कहते हैं, यानी फायदा उठाने वाला, इसमें फायदा है। अब हज के फराइज याद रखिए, हज के तीन फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? तीन, अहराम, वकूफ अरफा और तवाफ जियारत। इन तीन में से कोई एक भी साकित हो गया तो हज नहीं होगा। मसलन अहराम के बगैर तो हो गई नहीं, जाहिर है कोई ऐसा नहीं कि जो बगैर अहराम के हज करे कहे कि मैं अपने कपड़ों में करूंगा, हज नहीं हो सकता, लाजिम है। अहराम बांधने के बाद हज की नियत से तलबिया पढ़ना और उसके बाद तमाम अहकाम अदा करना यह फर्ज है, लाजिम है, बगैर इसके नहीं। अच्छा, अहराम बांध लिया, तलबिया पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, वकूफ अरफा नहीं, हज नहीं हो। वकूफ अरफा का मतलब यह है 9 जिलहज को जवाल आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में ठहरना, यह हज के फराइज में से। आप मीना चले गए, मुजल्फा चले गए, सब कर लिया, लेकिन वकूफ अरफा नहीं किया, हज नहीं हो, यह फराइज में से। तीसरा तवाफ जियारत, 10वीं जिलहज की सुबह से 12 जिलहज की शाम तक, यानी गुरूब आफ्ताब तक, सर के बाल मुंडाएं यानी हलक कराएं या कसर कराने के बाद यह किया जाता है। अगर यह तर्क हो गया, आपने नहीं किया, तब भी हज मुकम्मल नहीं हो, कि एक फर्ज आपसे साकित हो गया। तो याद रखिए, ये फराइज अगर छूट जाएंगे, इनमें से एक भी छूट गया या खुदा ना खास्ता सारे छूट गए, तो हज मुकम्मल नहीं होगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो यह कि जो हज करने जा रहे हैं अपने जहन में यह रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे एक अजीम सआदत अता की, तो इसके तमाम अरकान मैं उसी तरह अदा करूं जैसा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताए। उसका तरीका क्या है, آپ ان نشستوں میں شرکت کریں، دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ احرام باندھنے کا طریقہ، اس طرف حاجی صاحبان توجہ نہیں دیتے، کسی کا احرام اتنا نیچا کہ پیروں میں آ رہا، فرش پہ لگ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، ناپاک ہو رہا ہے ان کو پرواہ، اور کسی کا اتنا اونچا کہ گھٹنوں کے برابر، بیٹھنے میں اس میں پریشانی۔ تو اس لیے سب سے پہلے طریقہ سیکھ لیں، بہت آسان طریقہ ہے، جو تربیتی نشستیں ہو رہی ہیں اس میں باقاعدہ احرام باندھ کر وہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ وہ احرام کا طریقہ سیکھیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اوپر کی جو چادر ہے سب سے پہلے کندھا کھول لیتے، یہاں سے ڈالی، اس کے نیچے سے نکال کر ایک کندھا کھلا، حالانکہ وہ طواف میں ہے، طواف کے بغیر نہیں ہے، وہ ایئرپورٹ سے ایک کندھا کھول کر جا رہے، حالانکہ پوری چادر ایسے ڈھانپ کر جانی چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور طواف میں بھی حکم یہ ہے کہ جب طواف مکمل ہو جائے اور آپ سعی کے لیے جائیں تو اسی وقت آپ اس کو صحیح کر لیں، یعنی جب آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ نے ایسے چادر ڈالی، نیچے سے نکال کے اس طرف دایاں کندھا کھلا ہوا، ٹھیک ہے نا، طواف مکمل کر لیا۔ اب اس کے بعد سعی میں بھی لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد نفل میں بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، طواف کے بعد کے نفل میں بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب طواف مکمل ہو گیا تو فوراً آپ اس چادر کو نکال کے دوبارہ سے اوپر ڈھانپ لیں، دونوں کندھے ڈھپے ہوئے ہوں اور ادھر سے ادھر اس کو ڈال لیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ احرام جو ہے ایک سے زائد آپ رکھیں، کبھی خراب ہو جائے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ چائے گر گئی کسی کے کپڑوں احرام پر یا اور کوئی چیز لگ گئی، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، احرام ناپاک ہو جائے آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو ایکسٹرا احرام، ایک زائد احرام آپ اپنے ساتھ رکھیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ اس کو تبدیل کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب حج کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یعنی 8 ذی الحج سے حکم یہ ہے کہ حرم میں جا کر فجر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد حج کی نیت کریں اور پھر چلیں۔ اب آپ ہوتے ہیں عزیزیہ میں، وہاں جانا مشکل ہے، بغیر سواری کے نہیں جا سکتے، بغیر کنوینس کے دور ہے، تو آپ وہیں سے نیت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے نہیں ہمیں حرم جانا ضروری ہے، ہمیں وہاں فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر ہمیں احرام باندھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ عزیزیہ میں ہیں، وہاں سے بھی آپ غسل کر کے احرام باندھ کے نیت کر سکتے ہیں اور وہیں سے آپ منا جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اور خاص طور پہ نوجوان، ظاہر ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، بوڑھے لوگ تو نہیں کرتے، لیکن نوجوان کہتے جی ہم پیدل حج کریں گے۔ اب پیدل حج کی فضیلت ہے، ایسی بات نہیں، ظاہر ہے ایک سواری پہ کر رہا ہے، ایک پیدل کر رہا ہے، بڑی فضیلت، لیکن اس کے ساتھ ایک مشکل ہے، اور وہ یہ ہے، ویسے تو انہوں نے ٹنل بنا دی، سرنگ بنی ہوئی ہے، اس میں تیز قسم کے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، آرام سے آپ جا رہے ہیں، ہوا بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہے۔ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ منا میں خیمے بالکل ایک جیسے، یعنی آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ میرا خیمہ ہے یا کسی اور کا ہے، بعض دفعہ دوسرے خیمے میں گھس جاتے ہیں۔ ویسے اس میں نمبر لگے ہوتے ہیں، گورنمنٹ آف سعودیہ نے کافی انتظامات اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ لاکھوں افراد ایک جگہ جمع ہیں تو اس کو مینج کرنا کتنا مشکل ہے۔ خیموں پہ نمبر بھی ہیں، راستے میں گائیڈ بھی آپ کو ملیں گے، سب کچھ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا اپنے حجوں میں جو تجربہ ہوا، کہ جو لوگ پیدل حج کے شوق میں مکے سے منا روانہ ہوئے، کہ ہم اب وہ ٹنل جو وہ حرم کے پاس سے ہی ہے، شوق میں چلے گئے، لیکن جب منا پہنچے تو ان کو اپنا خیمہ ڈھونڈنے میں ہی 2 یا 3 گھنٹے لگے۔ اچھا، خیمے کا حال یہ ہے، جو پہلے پہنچ گیا اس نے جگہ گھیر لی، وہ بیٹھ گیا وہاں پر۔ اب تو خیر صوفہ کم بیڈ بھی انہوں نے لگا دیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی لگا دی کہ اس کو آپ طے کر کے رکھ دیں، بعد میں لیٹے تو اس کو کھول لیں۔ ایک حج میں ہم نے یہ دیکھا، شروع کے حجوں میں، جس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، خالی دری تھی یا قالین تھا، یا لوگ اپنے طور پر بستر بند لے جاتے تھے، وہ بچھا کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ پھر شروع شروع میں بہت پتلے رنگ کے گدے جو فوم کے ہیں وہ بھی آ گئے، وہ بچھا دیے گئے۔ अब जो जरा हेल्दी लोग थे वो दो दो पे लेट गए आराम से। अच्छा, जो बेचारे बाद में आए उनके लिए जगह ही नहीं, और वो हैरत की बात यह कि जगह देने के लिए तैयार भी नहीं। 2 घंटे तो उन्हें खेमा ढूंढने में लगे, गर्मी में, धूप में, भूखे प्यासे बेचारे जब पहुंचे तो ऐसा लगा कि ये बेचारे बिल्कुल ही, बहुत से तो बाकी आकर लेट गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इतने वो थक गए ढूंढते में, और गर्मी शदीद थी कि आते ही खेमे में गिर गए, जैसे लेट गए। फिर उनको पानी वानी पिलाया, कुछ खिलाया, तो उनके होश आवाज दुरुस्त हुए। बस में जाने में यह होता है कि बस आपको डायरेक्ट उसी खेमे के पास पहुंचा देती, तो इसलिए पैदल चलने से एराज करें। हम इसलिए नहीं कह रहे कि आपको कोई सवाब कम कर रहे हैं, उसमें सवाब ज्यादा है, लेकिन ये जो परेशानी है इसलिए उससे बेहतर ये है कि आप जो मौलिम की बसें हैं उसी में आप जाएं, वो डायरेक्ट आपको खेमे के पास उतारेंगी और वो बता देंगी कि ये आपका खेमा है, उसमें आप चले जाएं और वहां जाकर वो करें। फिर चीज है जूतियों का संभालना। यहीं इसके हाजी कैंप से शॉपर मिलते हैं कपड़े के, उसमें आप अपनी जूती रखें, खेमे के अंदर जाएं उसमें रखी, अपने पास रख ली। बाद लोग वहीं उतार के आ जाते हैं तो दूसरे लोग वही पहन के चले जाते हैं, वो कहते हैं अपने मुसलमान भाइयों की जूतियां उसने पहन ली, हमने पहन ली, क्या मसला। अब बाद में वो बेचारा जूती ढूंढता फिर रहा है, उसको नहीं मिल रहा, तो इसलिए शॉपर में डाल के या कपड़े का थैला जो भी है आप अपने पास रखें, जब वुजू करने जाएं आपने निकाला, जाके वुजू किया, वापिस आए दोबारा डाली, फिर उसके बाद रखें, महफूज रहेगी, ना कोई पहनेगा ना कुछ होगा, कोई मसला कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी चीज जो है वो एक टेक्निकल बात है, और वो इसलिए है कि जब अजान होती है उसी वक्त सारा रश वॉशरूम की तरफ, और वॉशरूम के बाद वुजू खाने की तरफ, तो आप अपना शेड्यूल ऐसे बनाएं कि आप अजान से आधे घंटे पहले आप फारिग हो जाए या 1 घंटे पहले, उस पर कोई रश नहीं होता, वहां पर जाकर आराम से आपने वॉशरूम से फारिग हुए, वुजू खाने में भी रश नहीं है और वुजू करके आ गए, वरना लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, गालियां तक लोग देते हज में अहराम की हालत में। अफसोस की बात की कुरान ने कहा वला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज, हज में ना कोई लड़ाई है ना कोई फहश गोई है ना कोई झगड़ा है, और यही सारी चीजें हो रही होती एक दूसरे के साथ, कोई ज्यादा देर बैठ गया तो बाहर से चीखते जल्दी निकलो हमें जाना। खैर बहरहाल, तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आपको वजू करना है, आप फौरन वजू करें और उसके बाद निकल आए। तो मिना में ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मिना में जो खेमे हैं उसमें तो आपको एसी भी मिलेगा, बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ा वो जैसे प्लांट टाइप ऐसे लगा रखा है और एसी ऊपर छत पे रखे होते हैं, बहुत तेज हवा आती है और बिल्कुल ठंडक होती है। लेकिन अराफात में ऐसा नहीं है, अराफात में एसी का तसव्वुर ही नहीं है, वहां पे तो समझे कि दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो ऐसी की तैसी हो जाती, यानी वो खेमे जो हैं वो कपड़े के हैं, यहां पे तो फाइबर के हैं और ऊंचे, क्योंकि वहां कई दफा आग लग चुकी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने बहुत अच्छे खेमे बना दिए, आप लोग जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन अराफात में सिर्फ 1 दिन गुजारना होता है, कोई 2-3 दिन वहां रहना नहीं है, मिना में तो 3-4 दिन रहना है। तो उन्होंने इतने नीचे के, यानी आप हाथ उठाकर छत पे हाथ लगा ले, अराफात के खेमों का हाल ये। और दूसरी बात ये है कि वो नीचे होते हैं कपड़े के होते हैं और वहां पर एसी का कोई इंतजाम नहीं होता, उसमें ये कि सब्र और जब्त से काम लें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। बाद दफा वो ये करते हैं कि जो रूम कूलर जैसे होते हैं वो रख देते हैं, अब हर कोई सोचता है हम उसके आगे लेटें, तो हर हाजी जो है हर रूम कूलर के आगे नहीं लेट सकता, एक या दो ही लेटेंगे बाकी सब दूर होंगे, तो इसमें उनको सब्र करना चाहिए। 1 दिन गुजारना है, 1 दिन गुजार लें, और उसमें ये कोशिश करें कि फजूल बातों में दिन ना गुजारें। उसमें भी ये देखा गया कि लोग आपस में बैठे हैं, कोई अपने घर का किस्सा सुना रहा है, कोई अपने कारोबार की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कुछ नहीं तो मौलिम को ही बुरा भला कह रहे हैं, खामखा अपने नामा अमाल में गुनाहों का इजाफा कर रहे हैं। बेहतर चीज ये कि अराफात का पूरा दिन वो बड़ी मकबूलियत का दिन है, उस दिन जो भी अल्लाह से मांगे तलब करे खालिक कायनात अता फरमा। मकबूलियत का दिन है, वकूफ अरफा। तस्बीह और तहलील कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए, नवाफिल पढ़िए, दुआ कीजिए अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने अजीज और रिश्तेदारों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज का जो रुकन आप अदा कर लें उसके फौरन बाद दुआ करें, मौला तेरे करम से मैंने ये अदा कर लिया, बाकी मेरे लिए और आसान कर। उसी के करम से आसान होगा, बार बार ये दुआ करते रहेंगे पूरा हज आसान हो जाएगा। यानी कि हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम कहें कि हमने ये करके आ गए, अल्लाह तबारक व ताला का करम, उसी ने तौफीक दी है, उसी ने बुलाया है और वही कबूल करे। वरना आप देखें कि कितने लोग ऐसे हैं, हदीस शरीफ के मुताबिक हाजी कैसा होना चाहिए, यानी जब वो हज करके लौटता है तो हदीस शरीफ के मुताबिक वो ऐसा होता है जैसे आज ही पैदा हुआ, सारे गुनाहों से बिल्कुल पाक, जैसे आज उसकी मां ने उसे जना है, ऐसा हुआ। हमें ऐसा हाजी बन के आना चाहिए। और दूसरी हदीस शरीफ उसके मुताबिक बहुत से लोग ऐसे हज करके आते हैं कि सिवाय भूख प्यास थकन के उन्हें कुछ हासिल नहीं, यानी हज ही कबूल नहीं। अगर आदमी इतना पैसा खर्च करके जाए और उसका हज कबूल ना हो तो कितनी बड़ी गफलत, कितनी बड़ी नदानी और कितना बड़ा खसारा। इसलिए हर हर अमल पर, हर हर कदम पर ये दुआ करते रहे, मौला तेरे करम से ये रुकन अदा हो गया, अब अगला मरहला तो अपने करम से आसान फरमा, खालिक कायनात आसान फरमा। मुजदलफा में रात गुजारनी है, अराफात में दिन गुजारना है, उसके बाद मुजदलफा में रात गुजारनी। अब आप देखें तरतीब कैसी है, खालिक कायनात ने लिबास के गुरूर को तोड़ दिया, मकान के गुरूर को तोड़ दिया, जगह के गुरूर को तोड़ दिया, ओहदा और मनसब के गुरूर को तोड़ दिया। सबसे पहले लिबास के गुरूर को तोड़ा। आदमी अपने कपड़ों पर नाज करता है ना, मेरा इतना अच्छा लिबास है, मैं कीमती से कीमती पहनता हूं, ये फला जो है इसके पास पैसे नहीं है, ये कमजोर है, इसके पास लिबास जो है बहुत सस्ता है। लिबास पर गुरूर, सबसे पहले लिबास का गुरूर तोड़ दिया, अपने सब लिबास उतार दो, दो चादरें पहन लो बस, एक नीचे बांध लो एक ऊपर बांध। मौला हम अपना लिबास पहन लें, हुक्म होगा नहीं, वही लिबास पहनना है जो मेरे महबूब ने पहना। दो चादरें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहनी, एक नीचे बांध ली एक ऊपर, तो क्या है तुम बादशाह हो, तुम अमीर हो, तुम वजीर हो, कोई भी हो, यही दो चादरें पहनी। यहां तक कि सऊदी अरब का शहनशाह भी अगर बादशाह भी हज करने आएगा तो वो अपना जुब्बा नहीं पहनेगा, यही दो चादरें पहने। सबसे पहले लिबास के गुरूर को तोड़ा, उसके बाद आदमी को अपने बालों पर गुरूर, कोई कैसा स्टाइल बना रहा है, कोई कैसा स्टाइल बना रहा है, बेहतरीन किस्म के शैंपू इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग तो टोपी ऐसे ही नहीं ओढ़ते कि हमारे बाल खराब हो जाएंगे, क्रीमें लगा लगा के कोई इधर कोई उधर अजीब अजीब किस्म के स्टाइल निकले, दोनों तरफ से बाल नहीं है, बीच में बाल है, ये क्या है भाई, कहने ये भी स्टाइल, अच्छा किसी के बीच में से बाल नहीं है, दोनों तरफ बाल है, ये क्या बात है, ये भी स्टाइल। अल्लाह ताला ने सारे स्टाइल खत्म कर दिए, फ्री स्टाइल कर दिए, सर मुंडवा दो, बाल ही नहीं है, गुरूर खत्म, सीधे साधे मुसलमान बन गए। और अफजल यही है, अच्छा इसमें भी दो चीजें रखी, एक हलक एक कसर। हलक के माना तो बिल्कुल उस तरह से सर मुंडवा देना, इसको हलक कहते, कसर यानी कम करा लेना, तरशवा देना। तो हमारे बुजुर्गों ने तो ये बताया जो अफजल है वही करो, बालों की वजह से सवाब, सवाब को छोड़े नहीं, मैं हल्के करा लूं ताकि कोई कहे नहीं कि गंजा आ रहा है या कोई कुछ ऐसा ना कहे, लोग मेरे मजाक ना उड़ाएं, मैं हल्के करा लूं, अरे ये तो अपने घर की खेती है, एक महीने बाद फिर तैयार है ना। तो इसलिए जो अफजल चीज है उसे करना चाहिए। अच्छा आपने एहराम पहन लिया, लिबास का गुरूर खत्म हो गया, सब एक ही लिबास में, कोई करोड़पति है, अरबपति है और कोई फकीर है, सब एक लिबास में, लिबास का गुरूर खत्म। बालों पर गुरूर होता है, सर मुंडवा दिया, चलो ये भी खत्म हो गया। अब मकान का गुरूर, मीना में खेमे दे दिए, पक्का मकान नहीं है, खेमे में आओ और सब एक साथ लेट जाओ, ये नहीं कि अलग अलग कमरे, सब एक साथ, एक साथ है। मकान का गुरूर खत्म। अब यहां तो खेमे थे, वहां और इससे कम दर्जे का खेमा लगा दिया, यहां तो ऊंचा था, एसी भी था, सब कुछ था। अब मीना से जब अराफात गए, अब छोटे छोटे खेमे हैं, जैसे आप हाथ ऊपर करें तो उसकी छत पकड़ ले खेमे की, कहीं से लटक रहा है, कहीं से धूप आ रही है, कहीं से कुछ है, मट्टी उड़ रही है, हवा चल रही है, वहां कोई ऐसी वैसी नहीं है। गर्मी में सब, एसी में रहने वाले भी गर्मी में, सब एक जगह। अब यहां तक तो हुआ, अब मुजदलफा में खेमे भी हटा दिए, नीचे जमीन ऊपर आसमान, बस यहीं बैठ जाओ। क्यों? मेरे महबूब बंदे इसी तरह रहे थे, तुम्हें भी ऐसे ही रहना। हजरत आदम और हजरत हव्वा इसी तरह रहे थे, तुम्हें भी ऐसे ही रहना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह रहे, तुम्हें भी इसी तरह रहना। जो मेरे महबूब बंदों ने किया तुम्हें भी वही करना। यहां खेमे थे अराफात में, उससे कम, और मुजदलफा में सब खत्म। बड़े से बड़ा अमीर आदमी, करोड़पति अरबपति आदमी सड़क पर लेटा हो, नीचे चटाई बिछाई लेट गए। मुजदलफे की वो रात भी मकबूलियत की रात, उस रात में थोड़ी देर सोना भी चाहिए और इबादत भी करनी चाहिए। और उस रात के लिए भी यह है कि जो दुआ मांगो खालिक कायनात उसी वक्त कबूल फरमाए। वो तो बुलाता इसीलिए है कि मैं बंदों को बख्शूं, मैं उनके गुनाहों को माफ करूं, मैं इनको जन्नत में दाखिल करूं। वो रात गुजार दी। अब वो रात गुजारने के बाद सुबह फिर चलना है मीना, वहां तीन शैतान आपका इंतजार कर रहे हैं, तीन, छोटा, मंझला, बड़ा, सात सात कंकरियां मारनी, और कंकरियां जो हैं वो मुजदलफे से ही चुन लेनी, वहीं पर ही, वहां जगह होती मिल जाती है, चने के बराबर हो, बहुत ज्यादा मोटी ना हो, बहुत ज्यादा छोटी ना हो, चने के बराबर हो, या थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, इससे ज्यादा नहीं। एक के लिए सात, तीन के लिए कितनी हो गई, 21, लेकिन हमें ज्यादा रखनी है। ज्यादा क्यों रखनी है? उसमें हुक्म यह है कि एक कंकरी आपने मारी, वो लगी नहीं, नीचे गिर गई, तो उसी को उठाकर दोबारा नहीं मार सकते, या आपके पास कहीं पड़ी है तो वो उठा के मार दी, नहीं, फिर दोबारा नई कंकरी, और कंकरियों को गिनकर धोकर फिर उस थैली में रखनी, बगैर धोए भी नहीं, ये भी हुक्म है। दूसरे कंकरी के अलावा कोई चीज नहीं मारनी। लोग जूते उठाकर मारते, चप्पले मारते, शैतान को कि आज मिल गया, आज इसकी ठुकाई करो, वो कहता ठीक है तुम मारो, तुम पाकिस्तान पहुंचो, मैं तुम्हारे साथ ही हूं पहले ही, इसीलिए कस्टम में ही झूठ बोलना शुरू कर देते वापसी पे। वो कहते क्या क्या कह रहे, कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ निकल रहा है, हज करते ही। तो इसलिए इन चीजों की एहतियात करें, कंकरियां मुजदलफे से चुन लें, उसको धो लें और जायद रख लें। अगर आपके पास बच गई तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। आपने पूरी 21 गिन के रखनी, ना कम ना ज्यादा, और उसमें से कुछ गिर गई तो फिर जाए होंगे, फिर आप कहां ढूंढते फिरेंगे। वहां भी पड़ी होती हैं लेकिन वो उठा नहीं सकते, उसके उठाने का हुक्म नहीं है। धुली हुई हो, जो गिनी हुई हो, और वो फिर आप मारें, और उसका भी तरीका है। ये सारी चीजें जो हैं ये जहन में रखें। इसके बाद फिर है कुर्बानी। कुर्बानी का अब तो अच्छा तरीका एक ये है कि जो ग्रुप लीडर हैं या जो भी आपके ग्रुप वाले हैं वो कुर्बानी कर देते हैं और उसके बाद आपको फोन कर देते हैं। जब तक कुर्बानी नहीं होगी उस वक्त तक हलक नहीं होगा, यानी सर नहीं मुंडवाया जाएगा। और उस वक्त तक तवाफे जियारत भी नहीं होगा, आप वहां नहीं जाएंगे हरम की तरफ। तरतीब है, पहले रमी, फिर कुर्बानी, फिर हलक, फिर तवाफ। ये बहुत से लोग पहले ही सिर मुंडवा के आ जाते हैं, तो वो गलत है। ला इल्मी की बिना पर है तो माफी हो सकती है, लेकिन जान बूझ कर है तो फिर नहीं। और ये तो मसाइल ऐसे हैं कि ये तमाम लोगों को मालूम होने चाहिए। तवाफ में जब आप जाएं, यानी हज से पहले करें या हज के दौरान करें या बाद में करें, उसमें एक टेक्निकल चीज ये है, बैतुल्ला शरीफ बीच में है, ठीक है ना, चारों तरफ तवाफ हो रहा, तवाफ शुरू होता है हजरे असफद से और खत्म होता है हजरे असफद। अब आपने तवाफ शुरू किया, करते करते बैतुल्ला के करीब हो गए, अब तो हरम बहुत बड़ा हो गया ना, अब तवाफ करते करते बैतुल्ला के करीब हो गए। करीब इसलिए भी होते हैं कि चक्कर छोटा हो जाता है, दूर होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, वैसे तो रश होता है, लेकिन होते होते आप करीब पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि बिल्कुल करीब तवाफ करते करते जब उनका तवाफ मुकम्मल होता है फिर वो वहां से बाहर निकलते और इस तरह हाथ करके। अब आप खुद गौर करें कि जब एक चक्कर ऐसे चारों तरफ चल रहा है और उसको तोड़कर कोई निकलेगा तो लोगों को परेशानी होगी, लाजमी कि आप यूं जा रहे हैं, दूसरा यूं जा रहा है। खैर लोग निकल तो जाते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, लोग रास्ता दे देते, निकल जाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर सूरत यह है कि जब आप छठे चक्कर पर पहुंचे तो आप दूर होना शुरू हो जाएं, बैतुल्लाह से थोड़ा थोड़ा सा पीछे हट जाएं, और सातवें चक्कर में और दूर हो जाएं। जब आप दूर होकर सातवां चक्कर पूरा होगा, वहीं से इस्तेलाम करेंगे, निकल जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर बिल्कुल करीब करीब करके सातों चक्कर बैतुल्लाह के करीब करके जब इस्तेलाम करके निकलेंगे तो निकलने में परेशानी, ये एक चीज है। लोग कर लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, मना भी नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल चीज है। अगर इस तरह पांचवें या छठे चक्कर में आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आते रहें तो सातवें चक्कर में आप बिल्कुल दूर होंगे, वहीं से इस्तेलाम करेंगे और आप निकल जाएंगे। इसी तरह तवाफ के बाद के नफिल, हुक्म तो यह है कि मकाम इब्राहिम पर अदा किए जाए, लेकिन आजकल नामुमकिन, रश इतना होता है कि पूरे हरम में भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हुक्म यह है कि आप वो करके बाहर आ जाएं, मतलब उस मुताफ में किसी भी जगह आप कर लें। ये कोशिश ना करें कि मैं मकाम इब्राहिम पर ही मैं नफिल अदा करूं। बाद लोगों को देखा कि वो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, अब जब नीचे देखा तो कोई साहब नफिल पढ़, जब आदमी खड़ा है तो नजर आता है और जब सजदे में हो तो नजर नहीं आता। अब अगर उसने नियत बांध ली और रुकू में है या सजदे में है और इधर से रेला आ रहा है तवाफ का, तो वो लोग तो टकरा कर गिरते हैं, ना उसका खुशू खुशू बरकरार रहता है, ना इनका तवाफ सही होता है, दोनों को नुकसान होता है। तो अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, तो कोशिश ना करें कि मकाम इब्राहिम पर ही, वहां पढ़ना नामुमकिन है, रश बहुत है। तो इसलिए मुताफ में, हरम में, जहां पर भी आपको जगह मिले आप वहां पर नफिल पढ़ने और दुआ करें। बैतुल्लाह पर पहली नजर पढ़े तो दुआ कबूल, पहली नजर। और हरम में आप बैठे हैं, जितनी देर आप बैठे अगर कुछ भी ना पढ़ें, सिर्फ उसको देखते रहें, हर पलक झपकने पर 10 नेकी आपके नाम आए, सिर्फ देखने में, और पढ़ रहे हैं तो सुभान अल्लाह। इसी तरह तवाफ के जो चक्कर हैं उसमें मसनून दुआएं हैं, लेकिन वो सारी याद करना मुश्किल होती है, और वो हाथ में लेकर पढ़ना उसमें भी दुश्वारी होती है। बहुत से लोगों को अरबी पढ़ने में दुश्वारी होती है, तो इसलिए वो कोई भी दुआ जो है पढ़ सकते हैं जो उनको याद हो, मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम वकीना अजाबन्नार, ये उन दुआओं में भी शामिल है, मसनून दुआओं में भी, और वैसे भी आप ये पढ़ सकते हैं। इसी तरह तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, कुरान करीम की कोई आयत सूरत याद हो आप तवाफ में वो पढ़ते रहें, दुआ पढ़ते रहें, कोई दुआ याद हो वो पढ़ते रहें, तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। जो दुआएं लिखी हुई है जरूरी नहीं कि वही पढ़ी जाएंगी तब तवाफ मुकम्मल होगा, आप कोई भी दुआ उसमें पढ़ सकते। उसमें नीची निगाह हो, दिल में खशियत इलाही हो और दिल में ये सोच ये फिक्र हो कि मौला मैं तेरे अजमत वाले घर में हाजिर हूं, तूने अपने इस गुनाहगार बंदे को ये तौफीक अता फरमाई है, अपने करम से मेरे इस हज को कबूल फरमा। ये इस नियत के साथ आप तवाफ करते रहें, उसके बाद दुआ भी यही करें और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखें कि इंशाअल्लाह वो जरूर जरूर कबूल फरमाएं। एक बुजुर्ग हरम में आकर सोए, ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आए। एक ने पूछा इस साल कितने लोग हज करने आए, दूसरे ने कोई तादाद बताई। अच्छा इतने लोग आए, हां, और कितनों का हज कबूल हुआ, कहा एक का भी नहीं। अरे ये कैसे हुआ, चले गए फरिश्ते। अब वो बुजुर्ग जो थे बेदार हुए, बड़े परेशान हुए, या अल्लाह मैं भी हाजियों में था, मेरा हज भी कबूल नहीं हुआ, ये तो कहते हैं एक का भी नहीं हुआ। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, फिर सोए हरम में, देखा फिर फरिश्ते आए, फिर तादाद पूछी कितनों का हज कबूल हुआ, कहा एक का भी नहीं, कहा किसी का भी नहीं, कहा नहीं, एक आदमी था जो हज करने नहीं आया मगर उसकी वजह से सबका कबूल हो गया। कहिए कैसे हुआ, उसने कहा कि वो एक मोची है, उसने जूतियां गाट गाट के हज के लिए पैसे जमा किए, काफी अरसे में वो पैसे जमा हुए और जब पैसे जमा हुए उसने हज का इरादा कर लिया, बिल्कुल तैयारी कर ली और करीब था कि वो एक दो दिन में रवाना हो जाता कि उसको इत्तला मिली कि उसके पड़ोस में, यानी जो उसके बिल्कुल पड़ोसी था, वहां से एक बच्ची आई। इसने उनसे कुछ खाना मांगा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देते। तो बड़ा गुस्सा आया, भाई मैं पड़ोसी हूं मुझे खाना नहीं दे रहे। गुस्से में गया, जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो जो साहिब खाना थे वो वापिस आए कि भाई ये बच्ची ने मना कर दिया, खाना नहीं देते क्यों। उन्होंने कहा हाँ मैंने मना किया, क्यों मना किया, मैं आपका पड़ोसी हूं। क्या भाई मसला ये है कि तुम वो खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते, जब आप खाना है तो मैं भी खा रहा हूं। कहा नहीं इसलिए नहीं खा सकते कि हमारे यहां 3 दिन या 4 दिन हो चुके हैं, हम सब फाके से गुजर, एक पैसा नहीं कि हम कुछ ले, एक लुकमा नहीं कि हम खाएं। मजबूरी के तौर पर एक मुर्दार बकरी हमें मिली, उसका थोड़ा सा गोश्त हमने पकाया, मुर्दार बकरी का, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, तो वो हम तुम्हें कैसे दे दें। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम सोचो कि भैया हमें खाना नहीं दे रहे, हमारी कैफियत यह है, इतने हम गरीब हैं, 3-4 दिन से फाके हैं और उन फाके की वजह से अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमने ये काम किया। तो तुम तो साहिब हैसियत हो, तुम वो गोश्त नहीं खा सकते, मुर्दार बकरी। तो इसने जब सुना, इसकी आंखों से आंसू जारी हुए और इसने वो हज के सारे पैसे उनको दे दिए। मैं खाना खाऊं और मेरा पड़ोसी भूखा रहे, और ये कैफियत हो कि मुर्दार खाने पर रजामंद हो जाए सिर्फ जान बचाने के लिए, नहीं तुम लोग ये पैसे ले लो अपने खाने पीने का इंतजाम करो। अब पैसे जब वो दे दिए तो जाहिर है इसके पास पैसों की कमी हो गई, जा नहीं सका, रोता रहा। अल्लाह तबारक व ताला ने इसके इस ईसार की वजह से, इस नेकी की वजह से इसका हज भी कबूल कर लिया और इसकी वजह से सबका हज कबूल किया। यह है अल्लाह तबारक व ताला की शान। तो उसकी जात बड़ी अजीम है, वो चाहता है कि अपने बंदों को बख्श दे, माफ कर दूं, उनकी खताओं को दरगुजर कर दूं। तो जिसको उसने बुलाया है उन तमाम हुज्जात को ये सोच लेना चाहिए कि जब खालिके कायनात ने बुलाया है तो कबूल भी करेगा, जब उसने तौफीक दी है अपने कर्म से, वरना आप देखें ना कितने लोग हैं उनको तौफीक ही नहीं। हर साल अमेरिका के चक्कर लग रहे हैं, यूरोप के चक्कर लग रहे हैं, पूरी पूरी फैमिलियां लाखों करोड़ों के टिकट लेकर जा रही हैं, कभी हरमैन शरीफेन जाना भी नसीब नहीं, जाना भी नसीब नहीं। और जिनको बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। उस वक्त जब बिल्कुल मैदान रेगिस्तान, ना कोई हैवान ना कोई इंसान, उस वक्त खालिक कायनात फरमाते इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ। मौला हज के लिए मैं बुलाऊं, मेरी आवाज कौन सुनेगा? इब्राहिम पुकारना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम। और फिर तुम देखो कि इस पुकार पर कौन कौन लब्बैक कहता है, और तुम देखोगे कि लोग सवारियों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर और पैदल इस पाक घर का तवाफ करने के लिए आएंगे। और आपने देखा 1400 1500 साल हो गए, रौनक में इजाफा ही इजाफा हो रहा, कमी नहीं है। जिसने उनकी आवाज पर लब्बैक कहा वो जरूर जाएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम उस वादिये गैर जी जरा में, जहां ना पानी था, ना कोई आदम ना आदमजात, ना कोई चरिन ना परिन, ना कोई दरख्त, कोई चीज नहीं थी, आज दुनिया की हर चीज वहां मौजूद। ये खालिक कायनात की शान, अपने घर में बुला लिया। अच्छा, बुजुर्गों ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर तुम्हें हज में तकलीफ ना हो तो तुम समझो कि तुम्हारे साथ मेहमानों वाला सलूक किया। इंसान नहीं चाहता मेहमान को तकलीफ हो, उसके आराम का ख्याल रखता। और अगर कोई तकलीफ हो तो समझ लो घर वालों वाला सलूक किया। घर वालों के लिए तो इतना मसला नहीं होता, मेहमान के लिए उसके सोने का इंतजाम, उसको उठने का, उसके खाने का, पीने का, सारी चीजें। तो इसलिए उन मुश्किलात पर सब्र, और हदीस शरीफ के मुताबिक जो हज की मुश्किलात पर सब्र करेगा, खालिक कायनात उसे अजर अजीम अता फरमाए। हमारी कैफियत तो है कि जरा सी परेशानी हो हम चीखना शुरू कर देते, वावेला करते हैं, हमने इतने पैसे दिए ये चीज नहीं हुई, हमने इतने पैसे दिए ये काम नहीं हुआ, ये एसी खराब है, ये कमरा खराब है, ये बिस्तर खराब है, फला फला चीज। अगर उस वावेला करने के बजाय, किसी को बुरा भला कहने के बजाय, फहश गोई के बजाय इंसान उन चीजों पर सब्र कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर अजीम अता फरमा दे। हमने तफसील के साथ चीजें बयान नहीं की, हमने सिर्फ इजमाली तौर पर खास खास चीजें आप सामने बयान कर दी। अराफात से मुजदलफा भी लोग पैदल जाते हैं, तो अगर बस का कोई इंतजाम नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि इंतजाम नहीं होता, और अक्सर इंतजाम होता है लेकिन बस नहीं पहुंच पाती। गुरूब आफ्ताब हो गया, आपको अराफात से मुजदलफे की तरफ जाना है, और वहां मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़नी है, लेकिन सवारी नहीं, पैदल लोग रवाना हो जाते, तो पैदल भी जा सकते, उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हो कि बिल्कुल सवारी का कोई इंतजाम नहीं है, आप एक ग्रुप बना लें और पैदल निकल जाएं। इसलिए कि वहां जाकर आपको कोई खेमा ढूंढना नहीं है, वहां खेमा है ही नहीं, वहां तो जो जगह मिले आपको वहां बैठ जाए। और वहां पर बोर्ड लगे होते हैं, बिदाया मुजदलफा, निहाया मुजदलफा, यानी पता चल जाता है यहां से मुजदलफे की हदूद शुरू हो रही और यहां मुजदलफे की हदूद खत्म हो रही, तो वो लगे हुए हैं, आप वो देख लें कि आप उसकी हदूद शुरू हो गई, वहीं आप अपना पड़ाव डाल लें, चटाई बिछा लें, चादर बिछा लें, वहीं पर बैठ जाए। ये तमाम चीजें हमने आपके सामने बयान की। और इसके बाद है मदीने तैयबा की हाजिरी। अक्सर लोग पहले भी जाते हैं, ग्रुप में जो जो भी कारवान जा रहे हैं उनके अपने अपने शेड्यूल हैं, और ये भी हम समझते हैं कि अल्लाह की एक रहमत है, सारे के सारे अगर मदीने शरीफ में जमा हो जाएं तो कदम रखने को जगह ना, इसलिए ये शेड्यूल होता है, इतने हुज्जाज पहले जाएंगे, इतने बाद में जाएंगे। जब हज का जमाना आया तो ये इधर आ गए, और हज के बाद जो नहीं गए थे वो फिर मदीने शरीफ चले। اور ہم اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ یہی ہے کہ اگر حج کیا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی تو حج ہی نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا من حج لم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور وہاں کی حاضری کے آداب یہی ہیں کہ وہاں کی مشکلات پر بھی صبر کیا جائے. دو آدمی مدینہ طیبہ پہنچے، کھانا آیا، ایک نے کہا یہ کیسا کھانا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. دوسرے وقت کھانا آیا، اس کو پھر پسند نہیں آیا. رات ہوئی، اس کے دوست کے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا اس سے کہہ دے کہ اگر ہمارے مدینے کا کھانا پسند نہیں ہے تو نکل جائے، کیوں آیا مدینے. اس لیے اگر کوئی چیز ناپسند ہو تو زبان سے کبھی نہ کہیں، آپ نہ کھائیں لیکن آپ زبان سے نہ کہیں کہ یہ چیز ناپسند ہے، یہ غلط ہے. مدینہ طیبہ کی چیزوں کو، عظمت والا شہر، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر گزر رہے، شان کے ساتھ جن ان کے ساتھ ہیں، انسان ان کے ساتھ ہیں، چرند پرند ان کے ساتھ ہیں. ایک مقام آیا، فرمایا تخت نیچے اتار دو، جن ان کا تخت لے کر اڑتے تھے، تخت نیچے اتار دیا. ایک میدان ہے، اس میدان کو پیدل چل کر عبور کیا، اور جب وہاں سے آگے بڑھ گئی پھر دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھے، پھر جنہوں نے اٹھا لیا اور اڑتے ہوئے پھر آگے بڑھ گئے. تو جو لوگ ساتھ تھے وہ حیران ہوئے، اے سلیمان علیہ السلام، یہ خالی میدان اس کو آپ نے پیدل چل کے کیوں عبور کیا، اس کے اوپر سے کیوں نہیں گزرے؟ فرمایا مجھے یہ بتایا گیا کہ اس جگہ ایک شہر آباد ہوگا اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، ادب کی وجہ سے میں اوپر سے نہیں گزرا، میں پیدل چل کے گزرا. یہ مدینہ طیبہ کا ادب، حضرت سلیمان علیہ السلام ادب کر رہے ہیں، اوپر سے نہیں گزروں گا، یہ سرکار کا شہر ہے، حضور ہجرت فرمائیں گے، یہاں پر ان کا روضہ مبارک ہوگا. اسی طرح حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ دونوں بھی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر آئے. حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں بھائی تھے، سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے. اس زمانے میں شہر تو تھا نہیں، میدان تھا، ریگستان تھا، جبل احد موجود تھا. سب جگہ چکر لگایا، دیکھا جبل احد پر چڑھے. جب احد پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا پہاڑ پہ، اور معتبر روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جبل احد پر دفن کر دی، اور جب دفن کیا، قبر میں لٹایا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بھائی تھے، محبت تھی، اور رو کر کہا کہ بھائی آپ اس دنیا سے چلے گئے. وہ ایک دم کھڑے ہو گئے، قبر سے کھڑے ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام. پھر خالق کائنات کا حکم ہوا کہ بس لیٹ جاؤ، دوبارہ پھر لیٹ گئے، وہیں قبر بنا دی گئی. تو حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار جبل احد کے اوپر ہے، لیکن کس مقام پر ہیں یہ کسی کو نہیں پتا، وہاں تک جانا ہی مشکل ہے، اور چلے جائے کہ اوپر چڑھ کے جانا پھر اس مزار کو تلاش کرنا، لیکن وہ وہاں پر موجود ہیں. تو بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے، وہ اس شہر کو دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہوگا، حضور کی آخری آرامگاہ ہوگی، سرکار کا روضہ یہاں بنے گا، اس کو دیکھنے کے لیے آئے. تو اس شہر میں جب جائیں تو وہاں پر، وہاں کا تو ہر خطہ ہی مقبول ہے، جہاں چاہیں دعا کریں. مواجہ شریف میں دعا قبول ہے، ریاض الجنہ میں دعا قبول ہے، جنت البقیع میں دعا قبول ہے، اصحاب صفہ پہ دعا قبول ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ دعا قبول ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری قبولیت کی جگہ، جہاں جہاں موقع ملے وہاں پر دو رکعت نفل ادا کر. جب ہجرت کر کے آئے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، جب ہم مکے میں ہوتے تھے جب چاہتے تھے عمرہ کر لیتے تھے، اب جب سے ہم مدینے آئے ہیں ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے، یہاں عمرہ نہیں کر سکتے. سرکار نے فرمایا سنو، جس نے اپنے گھر سے وضو کیا، طہارت اور پاکیزگی حاصل کی اور وہاں سے چل کر مسجد قبا گیا اور وہاں دو رکعت نفل ادا کیے، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے. جتنی دفعہ جائے اتنی دفعہ ملے. اور یہ ایسا عمرہ ہے اس میں احرام کی ضرورت بھی نہیں، اس میں طواف کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں سعی کی ضرورت بھی نہیں، سرکار کی زبان مبارک سے نکل گیا عمرہ مقبول ہو. تو وہاں جائیں تو وہاں بھی یہ کوشش کریں، اگر روزانہ جا سکیں تو مسجد قبا جائیں اور جا کر دو رکعت نفل پڑھ لیں، روزانہ نہیں جا سکے تو جتنے دن بھی رہیں کوشش کریں کہ ایک دن چھوڑ کے یا کسی نہ کسی دن ضرور وہاں پر جائیں اور جا کر دو رکعت نفل ادا کریں. حدیث شریف کے مطابق ایک مقبول عمرے کا ثواب ضرور ملے. اسی طرح وہاں کے جتنے مقامات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ صحابہ نے کہا کہ جب سرکار سفر سے واپس تشریف لاتے تھے اور مدینے کے در و دیوار پر حضور کی نظر پڑتی تھی، اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے، میں جلدی مدینے پہنچ جاؤں. فرمایا مدینے کے دونوں کناروں پر اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو نہ کسی فتنے کو یہاں آنے دیں گے نہ کسی بیماری کو یہاں آنے دیں گے. پھر حضور نے دعا فرمائی، مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی اس سے دگنی برکتیں مدینے میں نازل کر. اسی لیے آج ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے دم قدم سے یہ کچھ سب کچھ ہے وہ خود مدینے میں. تو وہاں کی حاضری بڑی مقدس حاضری ہے اور اس میں ہر جگہ یہ کوشش کریں کہ با ادب رہیں. مسجد نبوی میں آواز بلند نہ ہو، مواجہ شریف میں آواز بلند نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور مصیبت جو موبائل نے شروع کر دی ہے سیلفی کی، وہ طواف میں سیلفیاں بن رہی، ایک اسٹرک لیے اس کو بٹن دبایا وہ نکل آیا، طواف کر رہے ہیں اور سیلفی بن، آپ عبادت کر رہے ہیں یا اپنی سیلفی بنا رہے ہیں؟ یہ سب غلط ہے، یہ آداب کے خلاف ہے. اپنی سیلفی خود بنانا یا دوسرے کو دینا کہ تم بناؤ میں طواف کر رہا ہوں، اب دھیان تو ادھر ہے تو دھیان اللہ کی طرف تو نہیں ہوگا. لوگوں کو دکھانے کے لیے سیلفی بنا کر بھیجتے ہیں نا، فوراً اس کو سینڈ کر دیا، پتہ چل گیا ہم نے طواف کر لیا. مواجہ شریف میں سیلفی بن رہی ہے، سامنے سرکار کا روزہ سیلفی بن رہی ہے، وہاں تو اپنا ہوش نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. کیمرے کے سامنے آ کے ہاتھ ہلا رہے ہیں، ہوٹل میں ٹی وی لگا ہوا ہے، دوستوں کو بٹھایا، دیکھو میں جا رہا ہوں ابھی میں ہاتھ ہلاؤں گا. وہاں وہ لوگ دوست جو ہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود کیمرے کے پاس جا کے ہاتھ ہلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. کیا یہ تماشا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آداب کے خلاف ہیں. حرم میں اور مواجہ شریف میں، سرکار کی بارگاہ میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک طرف رکھ دیجئے، ہاتھ باندھ کر، نظر جھکا کر، ادب کے ساتھ وہاں پر جائیے، حاضری قبول ہو گئی، یہ سب سے بڑی سعادت. 70,000 فرشتے جہاں پر روزانہ نازل ہو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے روزے پر 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے دن وہ دوبارہ نہیں آتے، ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی، خالق کائنات پھر 70,000 پیدا کر دے. تو ہم تو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ خوش نصیب ہیں کہ وہ تو عمر میں ایک ہی دفعہ حاضری دے رہے ہیں، ہم تو بار بار جا رہے ہیں، ان کو تو دوبارہ حاضری کی توفیق ہی نہیں، جا ہی نہیں سکتے. دوسرے دن پھر 70,000 پیدا کیے جائیں گے، وہ درود و سلام پیش کریں گے اور واپس جائیں گے. تو انسانوں پر، غلاموں پر کتنا کرم ہے، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अब उसको देखो जिसके सामने काबा भी झुका था, अब उनका रोजा देखो। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये आंखें जो दी हैं ये मैंने, मेरी तो हैं, तुम्हारा क्या है? तो मैंने जो आंखें दी हैं उन्हीं से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो इसलिए वहां पर दुरूद पाक की कसरत कीजिए और हरम शरीफ में बैतुल्लाह में अस्तगफार की कसरत कीजिए। ये बुजुर्गों का तरीका है। अगर 125,000 मर्तबा हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना जितना भी हो जाए, और मदीने तैयबा में 125,000 दुरूद शरीफ हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना जितना भी हो सके वो हो जाए, सरकार की बारगाह में पेश कर। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और दुरूद सलाम का जवाब भी अता फरमा, ये तो उनकी शान है, उनका करम है। ये तमाम चीजें अपने जहन में रखें और कोशिश करें कि वहां किसी की दिल आजारी ना हो, किसी से बहस मुबाहसा ना हो, किसी से तल्ख कलामी ना हो, कोई ऐसा अमल ना हो कि दूसरे को नुकसान पहुंचे। इन तमाम चीजों पर सब्र करते रहें और हर हर मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहें कि मौला तूने बुलाया है, तू ही इस हज को कबूल करेगा और इसको मेरे लिए आसान फरमाए। तो इतनी आसानी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि पूरा हज मुकम्मल हो जाएगा और आपको कोई परेशानी कोई मसला नहीं हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो मसाइल हैं वो आप सीखने की कोशिश करें। जितनी किताबें मिलती हैं लोग उसको नहीं पढ़ते, जितनी किताबचे मिलते हैं लोग उसको नहीं पढ़ते, तरबियती नशिस्तों में शिरकत नहीं करते, मसाइल को समझने की कोशिश नहीं करते और फिर वहां जाकर खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान। एक साहब तवाफ करके वापस आके बैठ गए कि भाई आपने सही की? कहा नहीं की। क्यों? कि मैं थक गया। अरे आप थक गए, ये तो उम्रा मुकम्मल नहीं हुआ। यार मैं अपनी जान को देखूं या मैं उम्रे को देखूंगा? मैं तो आराम करूंगा भी होटल जाकर। जबरदस्ती उनको पकड़ कर ले गया, भाई सही तो कर लो ताकि उम्रा तो मुकम्मल हो जाए। तो इस किस्म की बातें जब होती हैं जब ला इल्मी हो, पता ना हो, तो पहले से तमाम मसाइल को सुनिए, उनको सीखिए, उनको समझिए, किताबों को पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा उलमा से पूछिए और कोशिश करें कि कोई अहम रुकन जो है वो जाया ना हो, कोई ऐसा अमल ना हो कि जो हज में नुकसान हो जाए। तो वो इतना हज के मसाइल इतने मुश्किल नहीं है और हर कारवान वाले अपने साथ किसी ना किसी आलिम दीन को लेके जाते हैं, वहां भी उलमा होते हैं, उससे बड़ी आसानी होती है कि वो साथ साथ आपको मसाइल भी बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो इसलिए इस तरह आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज मकबूल होगा, मंजूर होगा, कबूल होगा। अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम हुज्जाज को जितने भी हमारे मुसलमान भाई जा रहे हैं उन सबको सही तौर पर हज करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना, या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को भी आइंदा साल हरमैन शरीफैन की ज्यारत नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की ज्यारत नसीब फरमा, और जो हमारे भाई इस साल भाई और बहनें जा रहे हैं उन सबको हज मकबूल करने की तौफीक अता फरमा, इन सबको तमाम परेशानियों से मुश्किलात से बचाते हुए सही तौर पर आसानी के साथ ये फरीज अदा करने की तौफीक अता फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب